वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। कर्मयोग की व्याख्या तीसरा अध्याय, और हमारे पिछले सेटिंग में हमने भगवान ने अश्रद्धालुओं की व्याख्या की, इसके ऊपर चर्चा की हमने कि जो अनुतिष्ठित नहीं है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते बल्कि भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान में दोष देखते हैं, भगवान पर क्रोध करते हैं इत्यादि, तो ऐसे अश्रद्धालु और ऐसे मनुष्य, इनके विषय में भगवान ने कहा है कि वो अचेतसः, कि वो चेतना रहित है या उनकी चेतना विकसित नहीं हुई है। तो पिछले दो श्लोकों का सारांश इस प्रकार से, 31वें श्लोक में भगवान ने श्रद्धालुओं की व्याख्या की और 32वें श्लोक में जो अश्रद्धालु उनकी व्याख्या की। और हमारे पिछले सेटिंग में हमने जो चार प्रकार के अश्रद्धालु हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अपनी पुस्तक चैतन्य शिक्षामृत में ये चार प्रकार के अश्रद्धालु कौन हैं इसकी व्याख्या की। जड़वादी मटीरियलिस्ट, नास्तिकवादी अथीस्ट, शून्यवादी वॉइडिस्ट, मायावादी इम्पर्सनलिस्ट। अब भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सब की व्याख्या करने के पश्चात, ये चार अश्रद्धालुओं की व्याख्या करने के पश्चात, उन्होंने कलयुग में एक विशेषवादी होते हैं जो कि कलयुग की विशेषता दर्शाते हैं, और वो हैं संदेहवादी। तो संदेहवादी का अर्थ क्या हुआ? जिनके अंदर हर समय संदेह उत्पन्न होता रहता। और किसके संदर्भ में संदेह, हर समय संदेह उत्पन्न होता है? जब भी भगवान या धर्म की बात आती है तो संदेह, किंतु, परंतु, शंका, कुशंका, ये सब। तो ये सारे जो संदेह, ये केवल जब भी भगवान की कोई चर्चा होती है या धर्म की चर्चा होती है तब। जैसे हमने चर्चा की थी एक बार कि इंद्रिय भोग का सवाल आता है तो हर समय प्रश्न रहता है हाउ, कैसे। और जैसे ही भगवान या भगवान की भक्ति या धर्म का सवाल आता है तो प्रश्न वो पूछते हैं क्यों, क्यों ये भगवान, क्यों ये मंदिर, क्यों ये धर्म, क्यों ये साधना, क्यों भगवद गीता, क्यों क्यों क्यों। तो आज का श्लोक लेने से पहले, हम जो पिछली बार इनके विषय में हम इतना चर्चा नहीं किए थे, तो इनके विषय में चर्चा न करके आज आपके सामने एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की जाएगी अभी इसी वक्त, और उसके पश्चात फिर हम आज का श्लोक लेंगे। तो ये जो लघु नाटिका है ये आधारित है वो जो हाल ही में एक सिनेमा बना था, ओ माय गॉड। तो उसमें मुझे बताया गया था कि हमारे कांजी भाई, आप लोग वाकिफ होंगे शायद कांजी भाई से, तो मुझे बताया गया था कि कांजी भाई, जिनके अंदर बहुत से संदेह थे और उन्होंने अपने संदेह व्यक्त किए, और उस सिनेमा के द्वारा यह दर्शाया गया कि उनके जो संदेह हैं भगवान और धर्म से संबंधित, वो बहुत ही जायज हैं। और अंततः ये मुझे बताया गया था कि लोगों ने उनके संदेह सुनकर, जो कभी उनके मन में ऐसे संदेह नहीं थे, वो जागृत हो गए भगवान को और धर्म के लेकर। तो हम कुछ उनके संदेह उसमें से लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे शास्त्र के आधार पर भगवान और भगवान के प्रतिनिधि सही तरीके से उन संदेह को कैसे दूर करते हैं। तो आपके सामने हमारे नासिक बॉलीवुड के तो कांजी भाई यहां पर आए हैं। कांजी भाई का स्वागत कीजिए तीन बार। तो अभी प्लॉट ये है कि कांजी भाई ये विश्व विख्यात हो गए हैं उस सिनेमा के बाद, और इतने विख्यात हो गए हैं कि उनके दो चेले चपाटे अन्ना और अन्ना, ये हैं। आप कौन है? गुरु गोलू, दिखने में भी गोलू हैं। हमने कुछ ही प्रश्न लिए थे जो ये संदेहवाद होता है, जिसके अंदर, हाँ, इनके प्रश्न बहुत वाजबी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न के अंदर कोई तत्व नहीं था, परंतु एक कलयुग का गुण या दुर्गुण आप बोलो कि किसी के अंदर यदि सही प्रश्न भी हो तो पथभ्रष्ट करने के लिए बहुत से कलयुग में उपस्थित हैं, जो ढोंगी फरेबी जो बोल रहे थे। और विशेष रूप से होता क्या है कि जब हमने कहा कि भगवान की बात आती है या धर्म की बात आती है तो कोई भी एरा गहरा नट्टू ठहरा खड़ा होके वो शुरू हो जाता है कि मेरी राय में भगवान या धर्म ये है। तो इसको हम बोलते हैं जो ये अपनी राय प्रस्तुत करते रहते हैं, इसको हमने एक नाम दिया है, ये कौम का नाम है राय बहादुर रायचंद। तो ये राय बहादुर रायचंद अपनी राय देते रहते हैं। जैसे कि अक्सर आप इनको देखोगे कि ये पार्क में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, ये अपनी राय प्रस्तुत करते रहते हैं कि मेरी राय में भगवद गीता भीम को सुनानी चाहिए थी। यदि भगवान कृष्ण मेरी राय मानते तो दुर्योधन को सुनानी चाहिए थी, दूसरा बोलता है। तो ये इनका क्लब शुरू हो जाता है, किसका? रायचंद, राय बहादुर राय, इनका क्लब शुरू हो जाता है। जैसे एक बार एक गांव में एक व्यक्ति बेचारे की दादी मर गई, तो अपनी दादी को कंधे पर उठाकर स्मशान ले जा रहा है तो हमारे रायचंद जी मिल गए। तो रायचंद जी पूछते हैं कहां चले, अब कहां चले, दादी बेचारी मर गई, कंधे पे उठा के बोला सिनेमा ले जा रहा हूं दिखाने के, घुमाने ले जा रहा हूं, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा शाम को। तो बोलता है अच्छा तो कौन से, पुराने वाले स्मशान में ले जा रहे हो कि नए वाले स्मशान में ले जा रहे हो? ये क्या प्रश्न हुआ भाई, पुराने वाले में ले जाओ? नहीं नहीं, नए वाले में ले जाओ, वहां पर मजा आता है। बोला मजा आता, मजा क्या आएगा इसके अंदर? बोला क्योंकि नए वाले में आप एकदम चिता के निकट तक जा सकते हो, तो क्या सर्दियों का मौसम है, हाथ भी ताप लेंगे। तो ये कब्र तक छोड़ते नहीं, स्मशान भूमि तक छोड़ते नहीं। जैसे कि उसी गांव में एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोली, तो मिठाई की दुकान के ऊपर उसने बोर्ड लगाया यहां ताजी मिठाई मिलती है। तो हमारे राय बहादुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देख भाई, तू यहां पर जो लिख रखा है यहां पर ताजी मिठाई मिलती है, तो सबसे पहले तो ये जो ताजी मिठाई है ये निकाल दे। क्यों? अरे तू बासी थोड़ी बेचेगा, ताजी बेचेगा ना, तो ताजी लिखने की क्या जरूरत है? तो उसने निकाल दिया, भाई ताजी निकाल देते हैं। फिर वो देखता है बोर्ड की ओर, फिर कहता है यहां पर लिख रखा है यहां ताजी मिठाई मिलती है। अरे मिलती मतलब क्या, तू बेच रहा है ना, तू बांट थोड़ी रहा है फ्री में, तो लोगों को पता है, तो ये मिलती निकाल दे। तो उसने ताजी मिठाई निकाल दिया, मिलती निकाल दिया, फिर कहा अरे लोग यहां पर पहुंचने के बाद क्या बोर्ड देखेंगे, दिख रहा है मिठाई सामने, तो यहां लिखने क्या जरूरत है? तो बेचारे का पूरा बोर्ड साफ करा दिया, पूरा बोर्ड साफ हो गया। उसके बाद में ये रायचंद बहादुर के बड़े भाई पहुंच गए और वो बोलते हैं अरे बोर्ड साफ, ये साफ बोर्ड रखकर तो अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा कुछ लिख यहां पर। बोला क्या लिखूं, यहां ताजी मिठाई मिलती है, लिख। तो ये उदाहरण हम दे रहे हैं कि जब अध्यात्म की बात आती है, और अक्सर मैंने अपने प्रचार में देखा है कि जब भी हम किसी से चर्चा करते हैं और जब चर्चा किसी क्लिष्ट सब्जेक्ट के ऊपर होता है जो कि भगवान से संबंधित नहीं है, साइंस के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री या इकोलॉजी के ऊपर, कुछ भी आप लोग, तो जब तक उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं वो चुप रहते हैं। जैसे ही भगवान का कोई संबंध आ गया तुरंत अपनी राय प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्यों ये होता है? क्योंकि अधिकांश लोग शास्त्र के आधार पर भगवान को प्रस्तुत ही नहीं कर रहे, तो क्योंकि शास्त्र के आधार पर भगवान को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, इसलिए हर एक व्यक्ति कलयुग में भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार वो अपना संदेह प्रस्तुत कर अपना मत प्रस्तुत कर रहा है, अपनी राय प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए जो पिछले दो श्लोक हमने लिए जिसमें कि भगवान क्या कह रहे हैं, ये मे मतमिदम नित्यम, कि मेरे मत के अनुसार अर्जुन तुम अनुतिष्ठित रहो, अर्थात शास्त्र के आधार पर तुम धर्म का पालन करो। तो इसके पश्चात फिर आज का श्लोक हम लेंगे, और आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण एक और श्लोक है इस अध्याय का, तो इसको हम दो भाग में लेने वाले हैं, आज पार्ट वन और अगले बुधवार को पार्ट टू लेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हासिल होगा। तो हमारे आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। आज का श्लोक पिछले दो श्लोकों से संबंधित है, तो ये हम जानेंगे कैसे। भगवान ने ज्ञानवान शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसकी व्याख्या क्या है, और प्रकृति के गुणों के आधार पर जो जीव चल रहा है उसके विषय में आज भगवान बता रहे हैं। तो उसके संदर्भ में भगवान ने जो वर्णाश्रम की व्यवस्था की है वो क्या है, ये जानेंगे। यान्ति शब्द की व्याख्या और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो भगवान ने आज के श्लोक में पूछा है, निग्रहम किम करिष्यति, भला दमन से क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले पिछले दो श्लोकों से आज के श्लोक का क्या संबंध है, बहुत गहराई से समझना है हमें आज के श्लोक का संबंध पिछले दो श्लोकों से। थोड़ा बच्चों को देखा, तो जैसे कि हमने जाना पिछले दो श्लोकों में भगवान ने श्रद्धालु और अश्रद्धालु इन दोनों की व्याख्या की। तो अब इन दोनों की व्याख्या करने के पश्चात अर्जुन का यह प्रश्न भगवान से कि भगवान आप कह रहे हो कि एक हैं श्रद्धालु और दूसरे हैं अश्रद्धालु, तो क्या आप मुझे श्रद्धालु की कैटेगरी में डाल रहे हो, और क्या आप अन्यों को जैसे कि दुर्योधन इत्यादि उनको अश्रद्धालु के कैटेगरी में डाल रहे हो? या अर्जुन का यह प्रश्न भगवान से कि क्या मैं वास्तविक रूप में आप में श्रद्धा रखता हूं, ये मुझे प्रश्न है, या मेरे अंदर यह संदेह है क्या मैं वास्तविक रूप में आप में श्रद्धा रखता हूं क्या। तो इसलिए आज का जो श्लोक है इसके अंदर भगवान ने कहा है कि जो श्रद्धा होनी चाहिए वो कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। फेथ शुड नॉट बी आर्टिफिशियल। जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट डू दिस, जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू सरेंडर एंड टू मी, डोंट डू दैट। Don't put your faith in me, Krishna is saying, artificially or forcibly. जोर जबरदस्ती से नहीं श्रद्धा कोई पैदा कर सकता। जैसे हमारे पिछले क्लास में हमने यह मुद्दा लिया था कि भगवान में श्रद्धा होती है कई बार लोगों की डर के कारण, कि यदि मैं भगवान के मंदिर ना जाऊं, यदि उनकी आराधना ना करूं, या जो भी उनका दिन है उस दिन यदि मैं अपनी हाजिरी ना लगाऊं तो कुछ मेरा बुरा हो जाएगा। विशेष रूप से जो देवताएं होते हैं, जो शनि महाराज इत्यादि देवियां होती हैं, उनसे बहुत डरते हैं लोग, तो डर के कारण। तो हमने मुद्दा लिया था कि फेथ, श्रद्धा काबिलियत पर आधारित है। फेथ इज डिपेंडेंट ऑन कॉम्पिटेंस, परंतु प्रेम जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। तो हम भगवान श्री कृष्ण पर केवल उनकी काबिलियत के आधार पर उनकी आराधना नहीं कर रहे। प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया? वी वर्शिप कृष्णा आउट ऑफ लव, सीइंग हिज कैरेक्टर, नॉट सिंपली हिज कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही कैन टेक अवे फ्रॉम अस, थिंग्स लाइक दैट। नहीं, तो इसलिए यहां पर भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इसलिए भगवत गीता, पूरी गीता में कहीं पर भगवान ने अर्जुन को यह श्लोक नहीं कहा कि अर्जुन तुम केवल अंधा विश्वास रखो मुझ में। नहीं, पूरी गीता सुनाने के पश्चात भी भगवान अर्जुन को यह कह सकते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारे पर निर्भर है कि तुम स्वेच्छा से मुझे शरणागत होना चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो, या तुम्हारे मन में जो तुम्हारी मनमानी ढंग से तुम जो कुछ करना चाहते हो। तो यहां समझ में आ रहा है कि भगवान कितना फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता दे रहे हैं हमको कि हम चयन करें, हम चुनाव करें कि हम प्राकृतिक रूप से हम कैसे नेचुरली भगवान में श्रद्धा जागृत करें। तो ये है आज का श्लोक, इसलिए बहुत ही सटल कनेक्शन है पिछले दो श्लोक और आज के श्लोक में समझना। अब भगवान ने आज के श्लोक में अपि शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञानवान अपि। तो ये अपि शब्द का अर्थ है जब किसी विशेष व्यक्ति को शामिल करना होता है। संस्कृत भाषा में जब कोई वार्तालाप कर रहा है और किसी के विषय में बता रहा है, अब उसे किसी विशेष व्यक्ति को भी अपने वार्तालाप में शामिल करना है। कि जैसे, अरे नासिक के लोग तो श्रद्धालु हैं ही, इससे भी ज्यादा अगर वो किसी और का उदाहरण दे रहा है कि झुमरी तलैया के लोग भी, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा? अपि, जब किसी और को शामिल करना है। तो यहां पर भगवान जब श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं तो भगवान सर्वसाधारण जो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं उनके विषय में तो बोल ही रहे हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानवान अपि, कि न केवल सर्वसाधारण बल्कि जो ज्ञानवान है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो ज्ञानवान अपि, ये दोनों शब्द मिलकर इनका अर्थ क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं अन्यों की बात तो कहना ही क्या, कि जब ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। तो भगवान यहां पर क्या बता रहे हैं कि ज्ञानवान जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो भी अपनी प्राकृतिक तरीके से भगवान में श्रद्धा रखते हुए अपने कर्म करता है, न कि कृत्रिम तरीके से। उसके ऊपर भी वो ज्ञान का फोर्स नहीं है, वो अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की आराधना करता है या भगवान में श्रद्धा रखता है अपने स्वभाव के अनुसार। हालांकि ज्ञान अर्जित कर लिया होगा उसने, बहुत ज्ञानवान होगा, जैसे कि कोई धनवान होता है, कोई शक्तिवान होता है, यहां पर ज्ञानवान अपि। तो अब ज्ञानवान शब्द के तीन अर्थ बताए गए हैं। सबसे पहला अर्थ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो सैद्धांतिक ज्ञान वाला, घबराइए मत, हम समझाएंगे इसका अर्थ क्या है। सैद्धांतिक ज्ञान वाला वो ज्ञानवान व्यक्ति होता है जो कि आत्मा और शरीर में भली भांति अंतर जानता है। सिद्धांत या फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानता है कि हां ये शरीर है और ये आत्मा है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो उस प्रकार के ज्ञानवान हैं, जो शरीर और आत्मा में अच्छे से भेद जानते हैं, वो भी अपने शरीर के अनुसार ही भगवान के श्रद्धा में लगते हैं। वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, परंतु फिर भी शरीर में आत्मा है उनका, और इस शरीर को वाहन बनाकर आत्मा को शरीर के प्रकृति के अनुसार वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो धीरे धीरे भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम यदि उस प्रकार के ज्ञानवान भी बन जाओ, फिर भी तुम्हारा शरीर क्षत्रिय है। तुम यदि सैद्धांतिक ज्ञान वाला बन जाओ, फिर भी तुम्हारा शरीर क्षत्रिय है, तो तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे क्षत्रिय शरीर को युद्ध में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानवान अपि। ये पहला अर्थ भगवान ने बताया। दूसरा अर्थ भगवान अर्जुन को डायरेक्टली संबोधित कर बोल रहे हैं कि अर्जुन, प्रथम अध्याय में तुम बहुत ज्ञानवान बन रहे थे। प्रथम अध्याय में अर्जुन बहुत विचारवान और ज्ञानवान बन रहा था, क्योंकि अर्जुन अपना ज्ञान प्रस्तुत कर रहा था भगवान को कि धर्मशास्त्र के अनुसार ये पाप है अपने सगे संबंधियों को मारना, और फिर केवल राज्य के लिए ये लोभ है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें सच सच बताऊं कि जो तुमने प्रथम अध्याय में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो ज्ञान प्रस्तुत किया, तुम व्यक्तिगत रूप से वैसा जीवन कभी नहीं जी पाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव क्या है, क्षत्रिय। तो भगवान ने कहा कि तुमने प्रस्ताव रखा था ज्ञान के आधार पर कि मैं यदि भिक्षुक का जीवन भी जीऊं तो भी मुझे वो स्वीकार्य है, परंतु इनको मारना मुझे स्वीकार नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भिक्षुक का जीवन भी जियोगे तो तुम क्षत्रिय शरीर में रहकर जियोगे, और जब तुम्हें कोई भिक्षा नहीं देगा तो तुम गांडीव उठाने वाले हो। जैसे होता है ना, बंदूक की नोक पर मुझे भिक्षा दो तो तुम गांडीव की नोक पर भिक्षा मांग लोगे। तो तुम ये जो बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तुत किए, भगवान उसको याद करते हुए आज के श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं, ज्ञानवान अपि। हे अर्जुन, तुम यदि अपने आप को वैसा ज्ञानवान भी मानते हो, तुम अपने स्वभाव से अलग नहीं हो पाओगे। अब तीसरा अर्थ भगवान ने आगे सातवें अध्याय में, भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा, बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान इस श्लोक में कहे हैं कि सुदुर्लभ वो महात्मा है जो बहुत जन्मों से ज्ञान अर्जित करने के पश्चात ये जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वमिति है, वासुदेव सर्वमिति। बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान, तो उस श्लोक में भी, सातवें अध्याय के उस श्लोक में भी भगवान ज्ञानवान शब्द इस्तेमाल कर। तो भगवान यहां पर यह बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम यदि अपने आप को मेरा भक्त मानते हो या मुझे सब कुछ मानते हो, जो मेरे भक्त होते हैं वो भी अपने स्वभाव के अनुसार मेरी भक्ति करते हैं। उनको लाइसेंस नहीं देता मैं कि ठीक है तुम मेरे भक्त बन गए, अब तुम बैठकर आराम करो और मैं देख लूंगा सब कुछ। नहीं, उनको भी उनके स्वभाव के अनुसार, उनके प्रकृति के अनुसार और शास्त्र के अनुसार कर्म करना पड़ता है। तो ये तीन अर्थ ज्ञानवान के समझाते हुए भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं, ज्ञानवान अपि हे अर्जुन। अब भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था की, ये भी एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है भारत में विशेष रूप से, कि ये विभाजन क्यों, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका विभाजन क्यों, व्हाई डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे यहां पर अब बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो अपने स्वभाव और अपने गुण और कर्म के अनुसार उनको वो दर्जा दिया गया, क्षत्रिय को उनके गुण कर्म के अनुसार दर्जा दिया गया, वैश्य शूद्र उनको अपने गुण कर्म के अनुसार दर्जा दिया गया। तो यहां पर जब गलत तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है कि हां ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे नगण्य है, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। ये जो जातिवाद या कास्टिज्म, ये सब कब शुरू होता है, जब इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण दिया, यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो पिरामिड बनाया है इसके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके विषय में बताया गया है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया हमारे शरीर का, कि यदि हमारे शरीर की तुलना वर्णाश्रम से की जाए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनसे की जाए, बैटरी जा रहा है क्या, तो प्रभुपाद ने कहा कि जो हमारा मस्तिष्क है ब्रेन, इसकी तुलना ब्राह्मणों से की गई है, क्योंकि जैसे कि चाणक्य पंडित उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी और शास्त्र का उनको इतना ज्ञान था, और बुद्धि उनकी तीक्ष्ण और शास्त्र ज्ञान, और उसके आधार पर वो चंद्रगुप्त को राज्य कैसे करना है वो सिखाते थे। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि ब्राह्मण जो हैं उनकी तुलना मस्तिष्क से की गई है, ब्रेन से। जो क्षत्रिय है जिनके अंदर बल है, ब्राह्मणों के अंदर शारीरिक बल नहीं होता लेकिन यहां बल होता है बहुत, क्षत्रियों के अंदर शारीरिक बल होता है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि क्षत्रिय की तुलना भुजाओं से की गई है। हमारा जो शरीर है, मस्तिष्क है ब्राह्मण, क्षत्रिय कौन है, भुजाएं। वैश्य जिनके अंदर ये निपुणता होती है कि कैसे वो अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखें किसी समाज की, मर्केंटाइल कम्युनिटी, तो हमारे पूरे शरीर की अर्थव्यवस्था कहां है, पेट में, कि जब यहां पर सब कुछ माल बराबर पहुंचता रहेगा, जब इस गोदाम में माल बराबर पहुंचेगा तब सारे जो अंग हैं वो अपने अपना कार्य ठीक से कर पाएंगे। तो वैश्यों की तुलना किससे की गई, पेट से की गई, और शूद्रों की तुलना पैरों से की गई, कि उनके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे कि पैर कितने अलग अलग प्रकार के कार्य, हमारे शरीर को यहां से वहां ले जाना, जो भी जरूरत है, चलना फिरना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य पैरों का होता है। तो यहां पर प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया पूरे शरीर का विभाजन करते हुए चार भागों में और चार वर्णों के अनुसार, तो इसमें प्रभुपाद ने यह हमें समझाया और भगवान भी हमें यह समझा रहे हैं कि ये सब हमारे शरीर के अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर इंटरडिपेंडेंट। यदि मस्तिष्क बोले कि नहीं मेरे वजह से ही शरीर चल रहा है तो गलत है, जैसे कि ब्राह्मण यदि बोले कि मेरे वजह से ही पूरा समाज चल रहा है तो गलत, यदि क्षत्रिय बोले कि नहीं मैं शरीर के भुजाएं हैं तो मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है वो भी गलत. सो एवरी लिम्ब इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. मस्तिष्क पैरों पर डिपेंडेंट है, पैर मस्तिष्क पर डिपेंडेंट है, इत्यादि. तो इसलिए यहां पर जब हम वर्णाश्रम की जो व्यवस्था उसकी चर्चा करते हैं तो भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम, नहीं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि ये जो चतुर्वर्ण और आश्रम है ये उनके गुण और कर्म के अनुसार इनका विभाजन हुआ है. बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है. गुण और कर्म का अर्थ क्या है? उनकी क्वालिटीज. गुण का अर्थ है उनकी क्वालिटीज और कर्म का अर्थ है वो जो कार्य करते हैं. और विशेष रूप से उनके जन्म के आधार पर नहीं. तो साथ साथ भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई ब्राह्मण है तो वो अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बनता है, अपने गुणों के आधार पर ब्राह्मण बनता है. कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई क्षुद्र है, तो वो अपने गुणों और कर्मों के आधार पर जो कुछ बनता है, जन्म आधार पर नहीं. प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि कोई न्यायाधीश है, कोई चीफ जस्टिस है, उसका बेटा केवल उसका बेटा होने के नाते बोल नहीं सकता कि अगला चीफ जस्टिस मैं हूं. क्यों? क्योंकि मैं न्यायाधीश का बेटा हूं. श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर तर्क दिया गया. यह तर्क इसलिए कि विशेष रूप से कलयुग में जो लोग कहते हैं ना कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, हालांकि कलयुग में तो बहुत बड़ा मजाक है ये बोलना, क्योंकि कलयुग के विषय में बताया गया है जन्म ना जायते शूद्र. जन्म से तो सभी शूद्र हैं. संस्कारात भवे द्विज. संस्कार, संस्कार का अर्थ है यदि गुण और कर्म को अपना सुधारे तब जाकर वो द्विज बनेगा. वेद पाठ इति विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण. जो ब्रह्म परब्रह्म को जानता है, जो अपने गुण और कर्म के अनुसार विप्र बनता है, द्विज बनता है, वो कहलाएगा, न केवल जो केवल जन्मा है. तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में यह तर्क दिया गया है, यदि कोई कहे कि मैं शर्मा परिवार में पैदा हुआ, या मैं वाजपेयी परिवार में पैदा हुआ, या मैं जो भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, तो यह तर्क दिया गया है. ठीक है, तो तुम जब पैदा हुए अपने माता के गर्भ से तो तुम्हारी माता ब्राह्मणी थी इसलिए तुम बोल रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे पिता ब्राह्मण थे इसलिए तुम बोल रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो, और उनके शरीर से तुम पैदा हुए. तो जब तुम पैदा हुए, श्रीमद् भागवत ये प्रश्न पूछता है कि तुम्हारे शरीर के साथ बहुत से कीड़े भी पैदा हुए. जब कोई शिशु जन्मता है तो जितने कीटाणु अंदर होते हैं शरीर में माता के गर्भ में वो भी बाहर आते हैं. तो श्रीमद् भागवत का ये तर्क है, यदि तुम जिस गर्भ से बाहर आए हो उसी गर्भ से कीड़े भी बाहर आए तुम्हारे साथ साथ उसी टाइम, तो वो कीड़े तुम्हारे क्या हो गए? सहोदर हो गए. सहोदर किसको कहते हैं? भाई को. तो भाई यदि तुम्हारा सरनेम शर्मा है तो उस कीड़े का भी सरनेम शर्मा होना चाहिए ना, उसको भी जनेऊ पहनाओ फिर. तो यदि कोई ये तर्क रख रहा है कि मैं जन्म से किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, अरे तो कीड़ा भी तो पैदा हुआ तुम्हारे साथ, तो वो भी ब्राह्मण हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे बहुत से तर्क हैं, लेकिन यहां पर विशेष रूप से भगवान जो कह रहे हैं गुण कर्म विभागयो. और आज के श्लोक से इसका संबंध क्या है? भगवान आज के श्लोक में यही बता रहे हैं कि चाहे कोई ज्ञानवान हो चाहे कोई ज्ञानहीन हो, अपने गुण और कर्म के अनुसार ही उसकी गति उसे प्राप्त होती है. हरे कृष्णा. यह उदाहरण बहुत उपयुक्त उदाहरण है कि मछली, हम सब जानते हैं कि मछली कभी वहां नहीं बैठ सकती जहां बैठी है। मछली को कहां होना चाहिए? पानी में। और पानी में कौन है यहां? मनुष्य। तो मनुष्य के लिए उसका नेचुरल हैबिटेट है पानी के बाहर, और मछली का नेचुरल हैबिटेट है पानी के अंदर। तब यह उदाहरण दिया है कि कोई यदि अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करने जाए तो वो कैसा है? जैसे मछली अपने स्वभाव के विरुद्ध बाहर सीट पर बैठकर देख रही है पानी के अंदर कौन। हमको बचपन में वो कविता थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर मत निकालना क्योंकि बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। अच्छा मेमोरी आप लोग, तो बाहर निकालो तो मर जाएगी क्यों? क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वभाव है जल में रहना। अब यदि कोई कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली मछली को जल से निकालकर दूध के पतीले में डालता है, ये कहते हुए कि अरे दूध जल से ज्यादा उत्कृष्ट द्रव्य है, तो मछली दूध में मर जाएगी। चाहे दूध पानी से महंगा हो, पता नहीं कलयुग में क्या आजकल उल्टा हो रहा है सब, पानी भी इतना महंगा हो रहा है। तो हालांकि दूध पानी से महंगा है, परंतु मछली को पूछो तो मछली को क्या चाहिए? उसको मिल्क शेक नहीं चाहिए, उसको मैंगो मिल्क शेक भी नहीं चाहिए, उसको खाली H2O बस, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वभाव वही है। भगवान ने आगे कहा है, यान्ति प्रकृति यान्ति भूतानि। तो यान्ति ये संस्कृत का शब्द है जो कि यान शब्द से बना है, जैसे वायु यान बोलते हैं ना, तो यान का अर्थ है गाड़ी या वाहन, और यान्ति का अर्थ हुआ वाहन पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इसका अर्थ है, ये यान्ति का अर्थ है। तो अब प्रकृति यान्ति भूतानि, प्रकृति यान्ति भूतानि इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ? समस्त प्राणी, हम सब प्रकृति रूपी गाड़ी में सवार होकर चले जा रहे हैं। तो ये जो शरीर है, ये शरीर हमें किसने दिया है? भगवान की बहिरंगा प्रकृति ने। और इस प्रकृति ने हमें ये गाड़ी, ये वाहन दिया है चलने के लिए, कहीं जाने के लिए। अब निर्धारित हमें करना है कि हम गाड़ी को किस दिशा में ले जाएं। तो प्रकृति यान्ति भूतानि का अगर हम विश्लेषण करें तो प्रकृति ये वाहन है, ये यान है, और हम कौन हैं? हम ड्राइवर हैं। क्या इतना काफी है? एक ड्राइवर और एक गाड़ी, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, गाड़ी मतलब पेट्रोल के साथ गाड़ी, डेस्टिनेशन। हाँ, आप लोग निकट आ रहे हैं। एक व्यक्ति जो आपको दिशा दिखाए। तो यदि हमारा शरीर ये एक वाहन है और आत्मा वो इस वाहन का चालक है, तो परमात्मा कौन है? नेविगेटर। तो भाई यदि चालक के पास वाहन भी है, पेट्रोल भी भरा हुआ है, लाइसेंस भी है, उसको गाड़ी चलानी भी आती है, लेकिन यदि उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है या गाड़ी को किस दिशा में ले जाना है, तो क्या फायदा? इसलिए परमात्मा कौन है? नेविगेटर, वो नेविगेट करते हैं। तो अब समस्या हो क्या रही है, प्रश्न ये उठेगा कि भाई यदि परमात्मा नेविगेटर हम सब के अंदर हैं, तो फिर सब एक दिशा में क्यों नहीं जा रहे, पूरा नासिक इधर क्यों नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग जो ड्राइवर हो वो नेविगेटर की मदद लेकर आए हो यहां पर परमात्मा, और बहुत से जो गाड़ी चला रहे हैं नेविगेटर बोल रहे हैं कि ये गलत दिशा है, वो अपने कान में रुई घुसाकर नेविगेटर का नेविगेशन सुनना ही नहीं चाहते, उल्टा कान में रुई घुसाई हुई है कि उसका आदेश न सुन पाए और नेविगेटर का मुंह बंद कर दिया, बोलो मत। और कई तो ऐसे हैं कि परमात्मा के बदले किसी गलत व्यक्ति को नेविगेटर के रूप में बिठा रखा है। तो सोचो, वो जैसे बोलते हैं ना, गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला, कि एक तो गुरु चोर और चेला भी चंडाल, तो दोनों की मिली भगत में होगा क्या, राम नाम सत्य है। तो इसलिए यहां पर भगवान बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, न तो परमात्मा गाड़ी चलाएंगे, न गाड़ी हमको चलानी है, और गाड़ी भी दे रखी है प्रकृति ने। वो अगला हम प्रश्न पूछेंगे कि ये गाड़ी आई कहां से, सबसे पहले ये शरीर, तो सब कुछ दिया गया है, हमें केवल भगवान के आदेशों को पालन करते हुए अपनी गाड़ी चलानी है, बस इतना करना है। अब प्रश्न ये कि ये जो वाहन है, ये जो मटेरियल बॉडी मेरी है, ये किसने मुझे दी, या जैसे यहां पर प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मटीरियल बॉडी। सबसे पहला प्रश्न, क्या ये प्रकृति की वजह से मुझे ये गाड़ी मिली है, क्या भगवान कृष्ण इसके जिम्मेदार हैं, क्या मेरे पिछले कर्म, क्या कहोगे आप, क्विज आप लोगों के सामने, कितने मानते हैं कि पिछले कर्मों के वजह से हमें ये गाड़ी मिली है। अच्छा, कितने आप लोग मानते हैं कि प्रकृति के वजह से गाड़ी मिली है, और कितने मानते हैं कि भगवान कृष्ण के वजह से हमें ये गाड़ी मिली है। आप सभी सच सच बोल रहे हैं, और इसको जानने के लिए ये सारे प्रश्नों का उत्तर यस है। तो एक उदाहरण मैं सोच रहा था कि इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप लोगों को उदाहरण काफी रुचिकर लगेगा कि एक व्यक्ति जाता है भेलपुरी खाने, यहां पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों ने भेलपुरी खाई होगी। तो अब यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि जब भेलपुरी ये व्यक्ति बनाकर ग्राहक को देता है, तो वो भेलपुरी जो है, वो भेलपुरी जिस रूप में आई है, उस रूप में उस भेलपुरी के आने का जिम्मेदार कौन है, बनाने वाला, ऑर्डर देने वाला, अब देखिए यहां पर दो ग्राहक आए हैं, दो हो सकता है पहले से बैठे हों, तो एक आता है कहता है थोड़ा तीखा मार के, तीखा मार उसमें थोड़ा, तो उसके लिए वो थोड़ा तीखा मार के बनाता है। दूसरा आता बोलता है अरे मीठी चटनी डाजा डाल, मी गुजरात नू, तो मीठी चटनी ज्यादा डाल उसमें। तो एक है जो बहुत तीखा वो बनवाता है, दूसरा है बहुत मीठा बनवाता है, तीसरा आता है अरे आधा आधा डाल, आधा आधा खट्टा मीठा करो मीडियम। तो यहां पर वो जो भेलपुड़ी बनाने वाला है वो कौन है? वो प्रकृति है। और वो जो भेलपुड़ी बनाने वाले के सारे डब्बे भरे हुए हैं वो किसने भरे हैं? होलसेल वाले ने भरे हैं। उसने कहां से लिया है सब? कुरमुरा से, जो भी कुछ कहां से लिया है? होलसेल वालों से लिया। तो होलसेल वाला कौन है? भगवान कृष्ण। प्रकृति कौन है? भेलपुड़ी वाला। और हम लोग कौन है? ग्राहक। तो हम लोग ऑर्डर करते हैं कि मुझे थोड़ा तीखा शरीर चाहिए, मुझे थोड़ा मीठा शरीर चाहिए, मुझे थोड़ा इन बिटवीन मीडियम शरीर चाहिए। तो हम लोग जो ऑर्डर करते हैं, हमारे ऑर्डर के अनुसार प्रकृति सब मिलाना शुरू करती है। लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं जो इन डब्बों में है? वही, ये डब्बों के बाहर हम ऑर्डर नहीं कर सकते कि मुझे उसमें थोड़ा काजू डाल। अरे नहीं भैया, भेलपुड़ी में काजू नहीं आता। नहीं, मुझे चाहिए। तुम्हें चाहिए मतलब क्या? इधर जो मिलेगा उतना ही। तो भौतिक संसार में ऐसा ही है। कोई अगर बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा शरीर दो जो कि सुंदर भी हो, शक्तिशाली भी हो, विद्यावान भी हो, रूपवान भी हो, ये भी हो, वो भी हो, और स्वस्थ रहे, बिल्कुल भी निरोगी रहे, कोई रोग उसके अंदर ना हो, कभी मरे नहीं, कभी बुखार नहीं आए, कभी सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं। नहीं 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 भाई, भेलपुरी खाओगे दूसरे दिन तो फिर समस्या होगी। तो जो पिछला स्लाइड था, अब उससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि हमारा ये शरीर जो हमें मिला है ये सब का मिश्रण है। हाँ, हमारे कर्म जो कि हम ऑर्डर देते हैं कि हाँ मुझे ये शरीर, प्रकृति को ऑर्डर देना पड़ता है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स उसके पास है। लेकिन प्रकृति ने इंग्रेडिएंट्स कहां से भाड़े पर लाए हैं? होलसेल वाले से, और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अभी अगली बार जब भी आप भेलपुड़ी खाओ तो गीतामृत के क्लास को याद करना, उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा क्या होता है? गीतामृत में भेलपुड़ी याद आती है। हमारी प्रगति कब होगी? जब भेलपुड़ी खाते समय गीता याद आई। तो अब ये प्रश्न है कि भाई मैंने तो कभी कोई जानवर की योनि के विषय में ऑर्डर नहीं किया था। आई नेवर ऑर्डर्ड डॉग्स बॉडी। तो मुझे कुत्ते का शरीर क्यों मिल सकता है? या आत्मा को इतने अलग अलग योनियों में क्यों भ्रमण करना पड़ता है? क्या उत्तर है आपका? वेल, आई वेंट टू ऑर्डर भेलपुरी, आई नेवर वेंट टू ऑर्डर समथिंग टोटली विच आई डिसलाइक। सो इफ आई डिसलाइक बींग एन एनिमल और अ डॉग, वाई डू आई गेट? हाँ, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म के अनुसार हमारा शरीर बनता जाता है। प्रकृति क्या करती है कि हमने अगर कुछ ऐसे कर्म किए, मान लो कि अगर यहां पे कुत्ते का उदाहरण, तो अभी कुत्तों का कर्म क्या होता है? जो भी कुत्तों का कर्म कि भोगते रहना बिना मतलब, विशेष रूप से यहां इस कॉलोनी के कुत्ते बिना मतलब, बिना समय, बिना कारण अपना कीर्तन शुरू कर देते हैं वो लोग। तो कई बार आप देखो कि मनुष्य जब उस प्रकार के धीरे धीरे कर्म करने लग जाता है और अपने मनुष्य स्वधर्म को छोड़ने लगता है, तो धीरे धीरे प्रकृति क्या करती है? ठीक है, तुमने एक कुत्ते की तरह इतने वर्षों तक ये कर्म किया तो धीरे धीरे उसका अगला शरीर बनना शुरू हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता है। उस हिसाब से प्रकृति उसके देखती है, ठीक है इसने 20 साल तक ऐसे ऐसे कर्म किए, ये जानवर की तरह कर्म किए, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाता है। तो बहुत विशेष इसमें मेरे को एक फोटो मिली, आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली प्रकृति इसी प्रकार से परिवर्तित करती। क्या समझ में आ रहा है आपको इस फोटो से? तो जब कोई उस प्रकार के पशुवत कार्यों में लगता है तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी उसके प्रकार बनने लगती है, और फिर उसके आदतें, उसकी प्रवृत्तियां, उसके कर्म, और धीरे धीरे फिर उसका शरीर और प्रकृति उस प्रकार से उसका शरीर बनाती है। तो यहां पर दोनों का मिश्रण दिख रहा है आपको, है ना? तो बाहर से और अंदर से कुछ और, दोनों का मिश्रण दिख रहा है। फिर आगे का स्टेप यह होता है, जब उसके कार्य पशु के कार्य में और ज्यादा रचपच जाते हैं तब फिर उसका शरीर जो है उस प्रकार से। अब जैसे देखिए, मैंने देखा है पाश्चात्य देश में कुत्ते जो होते हैं उनको, उनकी इतनी पूजा होती है, वहां पे कुत्तों की पूजा होती है, कुत्तों के लिए डॉग पार्लर बनाए गए हैं, डॉग क्लब्स बनाए गए हैं, सलोन और स्पा, डॉग स्पा। एक अमेरिका में मैंने सुना वहां पर डॉग साइकेट्रिस्ट है, तो मैंने पूछा कि मतलब मालिक के लिए कुत्ते किसके लिए? और वहां पर उनकी इतनी पूजा और देखरेख उनकी होती कि कुत्ते भी ऐसे कि आपने कभी ऐसे ऐसे कुत्ते देखे भी नहीं होंगे। कई ऐसे कुत्ते होते हैं समझ में नहीं आता, इतने बाल होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर, कुत्तों के अंदर की कुत्ताई चली गई। पता पता नहीं ऐसा शब्द होता है क्या? समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं अभी। तो वो कुत्तों के अंदर की जो भी कुत्ताई चली गई, जैसे एक बस स्टैंड पर एक महिला ऐसे ही कुत्ते को लेकर खड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बाल उसके, कौन से योनि का कुत्ता है ये। तो उसके बगल में एक आदमी खड़ा हुआ था, एक कुत्ते ने उसके पैंट पर मूंद दिया। तब इसे आया गुस्सा, इसने क्या किया, इसने बिस्किट निकाला और बिस्किट आगे किया उसको खिलाने के लिए। तो एक तीसरा व्यक्ति देख रहा था कि ये कुत्ते ने इसके पैंट पर मूंद दिया और ये बिस्किट क्यों खिला रहा है इसको। तो उसने पूछा कि अरे भाई तुम्हारे पैंट पर इसने मूंद दिया, तुम बिस्किट क्यों खिला रहे? बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका अगला पिछला कहां है। तो मुझे लात मारनी है तो आजकल के कुत्ते ऐसे हैं, तो इसलिए मैं बिस्किट दिखा रहा हूं, समझ में आ जाए कि मुंह कहां है इसका। तो वैसे ही आजकल मनुष्य के तरह व्यवहार कर रहे हैं कुत्ते, क्योंकि इतने मनुष्य के साथ रह रहे हैं तो चले गए उनकी वो कुत्ता ही चली गई, और उल्टा हो रहा है मनुष्य में उनके गुण ज्यादा आ रहे हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। तो एक मुझे आर्टिकल भेजा गया था कुछ महीने पहले कि जब भगवान ने अलग अलग योनियां बनाई तो उसके अंदर जब मनुष्य योनि बनाई भगवान ने तो मनुष्यों को कहा कि तुम्हारी आयु 20 साल, क्योंकि 20 साल काफी है भगवत साक्षात्कार के लिए तुम्हें। तो मनुष्य ने कहा नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए भाई, 20 साल में क्या होने वाला है। तो उसने अपनी आयु बढ़वा ली भगवान से। तो बाकी की कुछ योनियां थी भगवान ने बनाई, तो भगवान ने गधा बनाया, तो गधे को कहा कि तुम्हारी आयु 40 साल। गधे ने बोला मुझे नहीं जीना इतना, एक तो गधा 40 साल क्या करूंगा मैं, 20 साल, मेरी 20 साल कम कर दो। तो भगवान ने उसकी 20 साल कम कर दी। फिर कुत्ता, कुत्ते को कहा तुम्हारी भी आयु 40 साल, कुत्ते ने बोला मुझे भी इतना नहीं जीना, मेरी भी आधी कर दो, तो उसकी भी आधी कर दी, उसकी भी 40 से 20 कर दिया। फिर बंदर, बंदर की भी आयु 40 साल रखी थी, तो बंदर ने कहा अरे मैं कहां 40 साल तक कुंता फाता रहूंगा, मेरी भी आधी कर दो, तो उसकी भी आधी कर दी। तो अब मनुष्य था जो कि संतुष्ट नहीं था अपने 20 साल की उम्र में, तो भगवान ने कहा ठीक है अब इनसे भाड़े पर ले ले, ये जो तीन हैं इनसे भाड़े पर ले ले 20-20 साल। तो यहां पर उसका लाइफ स्पैन बताया गया है कि एवरेज आजकल कलयुग में यदि आप 80 साल लो तो पहले 20 साल मनुष्य की तरह जीता है। फिर उसके अगले 20 साल भगवान ने जो उसने भाड़े पे किससे लिया, गधे से भाड़े पे 20 साल लिए। तो गधे की तरह मेहनत करना, कितने साल, 20 से 40 साल गधे की तरह मेहनत करना। आजकल तो गधे भी इतने मेहनत नहीं करते। फिर 40 से 60 साल जो मेहनत की है फिर उसकी वफादारी करना। तो वफादारी ये किसका गुण है, कुत्ते का गुण है, रखवाली, उसकी रखवाली करना। तो बस अब जितना इतना खून पसीना बहाकर जो कमाया, इकट्ठा किया है धन दौलत, घर गाड़ी इत्यादि, वो सब की रखवाली करना है, तो आगे के 20 साल उसकी रखवाली में बीत जाते हैं। और फिर बुढ़ापे में होता क्या है कि बच्चे तो रखते नहीं अपने पास आजकल माँ बाप को, तो फिर वो बंदर की तरह कभी इस घर से कभी उस घर में, कभी वृद्धाश्रम से कुंभ मेला में, कुंभ मेला से फिर मुक्ति धाम। तो उस आर्टिकल में बताया था कि आजकल मनुष्य का लाइफ स्पैन इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि इन प्राणियों के स्वभाव के अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो जो अंतिम आज के श्लोक की लाइन भगवान ने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, निग्रह किम करिष्यति, व्हाट विल रिप्रेशन अकम्प्लिश। इसका अर्थ यह है कि जो जिस स्वभाव और प्रकृति के अनुसार उसमें स्थित है वो वैसे ही कर्मों में अपने आप को लगाता है। अब क्योंकि ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आज के श्लोक की, इसलिए हम इसकी चर्चा और भी विस्तार से हमारे भाग दो में करने वाले हैं। परंतु संक्षिप्त रूप में इसका अर्थ क्या है हम दो उदाहरणों से समझाकर आज का गीतामृत विराम करेंगे। सबसे पहले कर्ण का उदाहरण, निग्रह किम करिष्यति। तो कर्ण का उदाहरण है, हम सब ये कथा जानते हैं कि कर्ण ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए परशुराम जी के पास गए, और परशुराम जी का नियम था कि उनके स्कूल में वो केवल ब्राह्मणों को एंट्री देते, क्षत्रियों को नहीं। तो कर्ण ने परशुराम जी को झूठ बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूं, तो परशुराम जी ने उसको एंट्री एनरोलमेंट करा लिया उसका अपने स्कूल में, गुरुकुल में। अब ये दिन ऐसा हुआ जब परशुराम जी कर्ण के गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे दोपहर के समय, और कर्ण के दोनों हाथ तकिए के समान परशुराम जी के सर के नीचे थे। तब एक भौंरा, बड़ा भौंरा आया और कर्ण के जंघा को काटने लगा। तो हम ये कथा जानते हैं कि कर्ण ने सहन किया कि मैं यदि हिलूंगा या उस भंवरे को हिलाने के लिए मुझे मेरे हाथ निकालने पड़ेंगे अपने गुरु के सर के नीचे से, तो उनकी नींद खुल जाएगी। तो उनकी नींद ना खुले इसलिए कर्ण ने सहन किया और खून बहने लगा। वो भंवरा इतना अंदर तक घुस गया कर्ण को काटते हुए कि वो खून वहां से बहते बहते परशुराम जी के हाथ को स्पर्श किया। तो परशुराम जी उठे और जब उन्होंने देखा तो सोचे, हम अगर होते तो हम तो, अरे क्या मेरा शिष्य है, कितना उसने सहन किया, मेरे लिए खून की नदियां बहा दी। लेकिन परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे को झूठ बोला, क्योंकि इतना शारीरिक कष्ट केवल क्षत्रिय सहन कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण उसको खुजली भी आए तो उठा देगा सबको, खुजली आ रही है भैया, उठ जा, खुजली आ रही है। तो ब्राह्मणों को शारीरिक कष्ट सहन नहीं होता। हाँ, अपमान वगैरह हो जाए, जो भी कुछ हो जाए वो उनको सहन कर लेंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। और क्षत्रिय उल्टा है, क्षत्रिय को यदि अपमानित कर दो, जिसे हम रविवार को महाराज जयसिंह की कथा सुना रहे थे कि राजा जयसिंह, जो लोग नहीं थे उनके लिए हम सुना देते हैं। तो राजा जयसिंह वो ब्रिटेन में जब गए तो बॉन्ड स्ट्रीट करके एक स्ट्रीट है बहुत फेमस वहां पर लंदन में, तो वहां रोल्स रॉयस कंपनी में देखने के लिए गए कि ये रोल्स रॉयस जो कार है कितने की ये लोग बेचते हैं। तो साधारण वेशभूषा धारण करके गए थे, धोती कुर्ता डालकर। तो वहां के जो सेल्समैन वगैरह, उन्होंने देखा कि ये कौन अनपढ़ गवार जाहिल भारतीय आया है, भगा दिया उनको। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है रोल्स रॉयस, ये अमीरों के लिए। तो इनको चुप गई वो बात। जयसिंह अलवर के राजा, राजस्थान के, तो वो गए और उन्होंने और फोन पर कहा कि मैं राजा हूं अलवर का और मैं आ रहा हूं आपकी रोल्स रॉय खरीदने के लिए। तो जब राजा बताया और पूरे अपने रजवाड़ी वेश में गए वो, तब फिर उनको स्वागत किया उधर, और उन्होंने जो 6 रोल्स रॉय थी, 6 की 6 रोल्स रॉय खरीद ली और उसको अलवर ट्रांसपोर्ट करवाया। और अलवर ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद वहां पर उन्होंने कहा कि ये पूरी 6 की 6 रोल्स रॉय अलवर नगर पालिका में भेजो कचरा उठाने के लिए। तो कचरा ये गाड़ियां उठा रही थी, रोल्स रॉय गाड़ी अलवर का कचरा उठा रही थी। और जब रोल्स रॉय कंपनी को ब्रिटेन में समझ में आया तो वो उनसे क्षमा याचना मांगने लगे। और फिर महाराज जयसिंह ने कहा कि जब तक लिखित में क्षमा नहीं मांगते और 6 रोल्स रॉय फ्री में नहीं भिजवाते, तब तक ये बंद नहीं करवाऊंगा मैं। तो उन्होंने लिखित में क्षमा मांगी और 6 और रोल्स रॉय फ्री में उन्होंने भिजवाई और फिर ये कचरा उठवाना बंद हुआ। तो ये क्षत्रिय अपमान सहन नहीं होता, लेकिन भंवरे ने काट दिया, खून निकाल दिए, वो सहन हो गया। तो इस कथा से समझ में आता है कि उसने अपने स्वभाव को ढकना चाहा कर्ण ने, लेकिन नहीं ढक पाया वो। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं, निग्रह किम करिष्यति, कि अर्जुन तुम भी एक क्षत्रिय हो और ये भिक्षुक का जीवन ब्राह्मणों का जीवन है, नहीं तुम भिक्षा पर नहीं जी पाओगे, तुमको पूरा फीस्ट चाहिए रोज खाने के लिए, तुम खाली दाल रोटी पे नहीं जी पाओगे, ये बोल रहे हैं भगवान। तो अब अर्जुन का उदाहरण हम लें। अज्ञातवास में अर्जुन क्या बने थे? बृहन्नला। बृहन्नला बने थे और महाराज विराट के नगर में उनकी जो पुत्री उत्तरा, उसके डांस टीचर, और यहां पर ये अर्जुन है नीचे, जो यदि आप नहीं पहचान रहे हो, जो सारथी बने हुए हैं वो अर्जुन हैं एक स्त्री के वेश में, बृहन्नला। तो उत्तर कुमार जो कि महाराज विराट के पुत्र, और जब कौरवों ने आक्रमण किया महाराज विराट के नगर पर, तो उत्तर कुमार गए लड़ने के लिए कौरवों से, पूरी कुरु सेना, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब थे। और सोचो उत्तर कुमार ये कहीं कोई सीडिंग में भी नहीं था, लेकिन सारथी ये जानता नहीं था कि सारथी अर्जुन है, तो सोच रहा था कि ये केवल एक डांस टीचर है, लेकिन भुजाएं बहुत अच्छी हैं इसकी, तो शायद रथ हांक लेगा मेरा। और वहां पर जब इसने कुरु सेना को देखा, तो वर्णन आता है महाभारत में, उत्तर कुमार ने जब कुरु सेना को देखा तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई उसकी, जो बोलते हैं ना। कुरु सेना एक विशाल समुद्र के समान, तो ये भागने लगा। तब अर्जुन ने उत्तर कुमार को रोका, उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम एक क्षत्रिय हो, पीठ दिखाकर भाग रहे हो, इससे अच्छा तो तुम मर जाओ यहां पर। और फिर अर्जुन ने कहा कि तुम रथ हांको, मैं लड़ूंगा इनसे। तो वहां पर हालांकि अर्जुन एक अज्ञात रूप में थे, अज्ञातवास में, अज्ञात रूप में थे, और वो भी कौन से रूप में, एक स्त्री के रूप में, परंतु उसके अंदर का जो क्षत्रिय खून है वो बाहर आ गया। तो भगवान ने क्या कहा, याद है अर्जुन, बृहन्नला के रूप में तुम अकेले पूरी कुरुसेना को परास्त किए थे, और यहां पर तुम बाहरी रूप से अर्जुन हो और अंदर से छक्का बन रहे हो, जो भी भगवान ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। क्लैब्यम का अर्थ है इंपोर्टेंट, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं हिजड़ा। तो भगवान अर्जुन को कहे कि तुम हिजड़े की तरह क्यों बात कर रहे हो, अरे तुम अज्ञातवास में थे बाहरी रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से तुम अर्जुन थे, यहां पर बाहरी रूप से तुम अर्जुन, अंदर से तुम हिजड़ा क्यों बन रहे हो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अंदर के क्षत्रिय को जागृत करो। और वही पूरी गीता है कि अर्जुन को उसके वास्तविक स्वभाव में लाना। इसलिए भगवान ने कहा निग्रह किम करिष्यति। अच्छा, ये जो श्लोक है, बहुत से लोग इसका गलत अर्थ निकालकर कि ठीक है भगवान ने तो ये कह दिया है निग्रह किम करिष्यति, तब तो फिर मेरे को लाइसेंस मिल गया, जो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है, दारू पीना, सिगरेट पीना, शराबी, कबाबी, जुआरी, सब कुछ। अरे भगवान ने निग्रह किम करिष्यति, गीता बोल रहा हूं मैं। तो इसका उत्तर हम जानेंगे हमारे भाग दो में, और मैंने सोचा कि एक रिसेंटली सेमिनार मैंने दिया था, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे भाग दो में, कि जो कलयुग में हमारी बुरी आदतें हैं, जिनको हम अपना स्वभाव मानते हैं, और गीता के ऐसे श्लोक को लेकर कहते हैं निग्रहम किम करिष्यति, व्हाट इज द पावर ऑफ बैड हैबिट्स एंड व्हाट इज द पावर ऑफ गुड हैबिट्स। तो ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक हम सेमिनार अगले बुधवार को ये लाइन को लेते हुए लेंगे, निग्रह किम करिष्यति, द पावर ऑफ हैबिट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।